आज से ये जो है उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी ने जो उपदेश दिए हैं उस उपदेश को पालन करना और उस उपदेश के अनुसार कार्य करते रहना, चलता रहना, उपदेश को पालन करता रहना, उससे फायदा क्या होगा? हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। रूप गोस्वामी के बारे में मैं बताया था, आपको याद है श्रील रूप गोस्वामी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु का एक महान पार्षद थे। रूप गोस्वामी ने कौन थे? महाप्रभु के साथ उनका मुलाकात होते समय रूप गोस्वामी कौन सी पद में थे, आपको याद है? राजा के प्रधानमंत्री नहीं, फाइनेंस मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थमंत्री, वित्त मंत्री। ओके ओके, वित्त मंत्री। तो राजा का उस समय बंगाल का राजा कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह, और हुसैन शाह वो शायद अफगानिस्तान से आया होगा, अफगानिस्तान या ईरान से आया था ऐसा। उस समय लगभग सारा भारत मुसलमानों के अधीन था, केवल दक्षिण भारत और ओडिशा वो कब्जा नहीं कर सका, नहीं तो उत्तर भारत में तो मुगल राज कर रहा था। आज से लगभग 500 साल पहले, और दक्षिण भारत में भी कुछ कोई कभी किसी किसी जगह मुसलमानों के अधीन था, पर उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, अवतीर्ण हुए थे। महाप्रभु ने उस समय अवतरण करके ये शिक्षा दिए थे कि किसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति जितना भी खराब हो सकता है, कितना भी खराब हो सकता है, पर भगवान को शरण लेने में कोई मुश्किल कभी नहीं हो सकता है। और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर संकीर्तन यज्ञ का सूचना किए थे, और उनके पार्षदों में से उस समय सब बड़े बड़े व्यक्ति उनके शिष्य बन गए, भक्त बन गए। महाप्रभु तो ऐसे शिष्य नहीं बनाया, केवल शिक्षा दिए थे, ऐसे किसी को दीक्षा महाप्रभु नहीं दिए थे। केवल कहावत है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिए थे। इस सिलसिले में बताया गया है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने बदल दिया था, जो और किसी के बारे में नहीं किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के साथ उनका पहले मुलाकात तो हुआ था, रूप गोस्वामी जहां रहते थे, जहां वो मंत्री थे, वो जगह में, वो उत्तर भारत का गौड़ नाम के एक स्थान है, जिसको जो आज मालदह के नाम में दिखाते हैं, और वहां रामकेली गांव में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रहते थे। तो गौड़ का राजा था हुसैन शाह, और महाप्रभु के साथ इस पहले मुलाकात के बाद रूप गोस्वामी घर छोड़कर निकल गए थे, और उन्होंने वृंदावन के ओर यात्रा की थी, किए थे। और वृंदावन जाते समय प्रयाग में उनके साथ महाप्रभु का मिलन हुआ। उस समय महाप्रभु वृंदावन से वापस आ रहे थे और रूप गोस्वामी ने वृंदावन जा रहे थे, तो प्रयाग में उनको महाप्रभु के साथ उनका साक्षात फिर हुआ था। और वहां प्रयाग में महाप्रभु ने गंगा के तट पर रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए थे, 10 दिन लगातार उनको शिक्षा दिए थे। और शिक्षा प्राप्त देने के पश्चात उन्होंने उनको निर्देश दिया, तुम अब जाओ वृंदावन में जाकर कृष्ण का लीला का जो स्थान है लुप्त तीर्थ है उसको उद्धार करो और शास्त्र ग्रंथ प्रणयन करो। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया कि धर्म का जो असल रूप है, असल धर्म जो है वो शास्त्र के विचार के माध्यम तुम प्रतिष्ठा करो। जैसे कुछ दिन पहले हमारे क्लास में एक व्यक्ति प्रश्न किए थे, शायद आप में से ही कोई होंगे, शायद आप यहां विराजमान हैं, प्रश्न किए थे, श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मैं धर्म संस्थापन करने के लिए आता हूं। हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। परंतु गीता में फिर भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। भगवान कह रहे हैं कि धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं आता हूं, और फिर भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्म को छोड़ दो। ये कैसी बात है, ये तो आपात विरोधी बात है। तो इसका उद्देश्य ये है, जब महाप्रभु कह रहे, जब कृष्ण ने कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान को शरण लिए बिना और जो कुछ धर्म के नाम में चल रहा है वो धर्म नहीं है। वो जो है, वो जो विचार है, वो जो कार्य है, वो जो साधन है, उसको सारे छोड़ दो, उसका जरूरत नहीं है। धर्म का असल उद्देश्य है भगवान को शरण लेना। इसलिए भगवान महाप्रभु कृष्ण ने कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म के नाम में जितने कुछ चल रहा है वो सारे को त्याग दो, त्याग कर केवल मेरा ही शरण लो। क्योंकि भगवान का शरण लेना ही असल धर्म है। और श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तब भक्तों के रूप में आकर वो कृष्ण ही शिक्षा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं उसको मान लो। महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि मैं जो कह रहा हूं मेरे को विचार मान लो, नहीं, उन्होंने कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो कहे हैं बताए हैं उसको ही मान लो। सर्व कृष्ण कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, और महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्णमेकं शरणं ब्रज। कृष्ण ने आकर हमें सिखा रहे हैं कैसे कृष्ण का शरण लेना चाहिए। तो ये जो विचार है, इस विचार को सत धर्म कहा जाता है, या इस विचार को ही सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन, सनातन शब्द का अर्थ क्या है, सनातन का मतलब है नित्य, सनातन नित्य, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो हर समय के लिए ही रहता है। और धर्म शब्द का अर्थ क्या है, धर्म शब्द का अर्थ है कोई वस्तु का विशेष गुण। जैसे पानी एक वस्तु है, पानी का जो गुण है उसे हम क्या कहते हैं, पानी का धर्म हम कहते हैं ना, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ये पानी का धर्म है तरलता, हाँ लिक्विडिटी। आग एक वस्तु है, आग का धर्म गुण क्या है, ताप और ज्योति आग के साथ साथ रहता है, तो हम इसको बोलते हैं ना ये आग का धर्म है। तो हर वस्तु के साथ जो गुण रहता है वो है उस वस्तु का धर्म। और आत्मा एक वस्तु है ना, आत्मा एक वस्तु है, तो आत्मा का जो गुण है वो है आत्मा का धर्म। जैसा पानी का धर्म है, आग का धर्म है, शेर का धर्म है, शेर का धर्म क्या है, पशु को मार के खाना, गाय का धर्म क्या है, दूध देती है। तो ऐसे हर वस्तु का या हर व्यक्ति का भी जो उसके साथ जो गुण उसके साथ रहता है उस गुण है उसका धर्म। वैसे ब्राह्मण जो है उसका गुण क्या है, वो है ब्राह्मण का धर्म। जो क्षत्रिय है उसका गुण उसका धर्म क्षत्रिय का धर्म है। जो वैश्य है उनका गुण उनका धर्म है। परंतु अंत में आत्मा है वस्तु, और आत्मा के साथ जो गुण रहता है वो है आत्मा का धर्म। क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए आत्मा का धर्म भी नित्य है। आज जो शेर है काल वो इंसान बन सकता है अगला जन्म में, आज जो ब्राह्मण है वो काल क्षत्रिय बन सकता है, आज जो शूद्र है वो काल वैश्य बन सकता है। ऐसा धर्म का परिवर्तन, ये सारे धर्म का परिवर्तन हो सकता है। तो ये इस धर्म को क्या कहता है, ये जो धर्म है जो परिवर्तनशील है, जो वस्तु के साथ साथ रहता है परंतु वस्तु का परिवर्तन होने से उसका धर्म का भी परिवर्तन होता है, उस धर्म को क्या कहता है, उस धर्म को कहता है नैमित्तिक धर्म। निमित्त शरीर को निमित्त बनाकर जो धर्म है वो है नैमित्तिक धर्म। और आत्मा के साथ जो धर्म, आत्मा का जो धर्म है वो है नित्य धर्म। और नित्य का मतलब है सनातन, तो उसके लिए हम इस धर्म को, आत्मा का जो धर्म है उसको हम नित्य धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं या जैव धर्म कहते हैं। जीव का धर्म होने के कारण ये है जैव धर्म। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इस धर्म को स्थापना करने के लिए शास्त्र के माध्यम सारे विचार करके इसको स्थापना करने का निर्देश दिए थे। इस विषय में वर्णन किया गया है नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्नो शरणा करो। नाना शास्त्र विचार नैक, नाना शास्त्र विचार न एक निपुणो सद्धर्म संस्थापक। नाना शास्त्र विचार न का मतलब बहुत सारे शास्त्र का, भिन्न भिन्न शास्त्र का विचार करके विचार न एक सद्धर्म संस्थापक। और कैसे निपुणो, निपुण मतलब, निपुण का मतलब क्या होता है, निपुण दक्ष, बहुत एक्सपर्ट, निपुण मतलब बहुत दक्षता के साथ उन्होंने ये एक सद्धर्म को स्थापना किया। कैसे, सारे शास्त्र का विचार करके। ऐसे मन की बनावट कोई धर्म नहीं है, ये शास्त्र का विचार के माध्यम इसका स्थापना हुआ। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको क्यों लोकानाम हितकारिणो। लोकानाम का मतलब लोगों के लिए, लोगों के, लोगों को हितकारिणो। हित का मतलब भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए ये सद्धर्म उन्होंने स्थापना किए थे। लोकानाम हितकारिणो। और इस कारण त्रिभुवने मन्नो शरण ना करो, इसलिए तीन भुवन में केवल पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्गलोक में, इस मर्त्यलोक में और ऐसे भी पाताल लोक में भी त्रिभुवने मन नौ शरण ना करो। उनको सब मानते हैं, श्रद्धा करते हैं और उनका शरण लेते हैं। वंदे रूप सनातनो रघु जुगो श्री जीव गोपाल को। मैं उन गोस्वामियों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वंदे, वंदना करता हूं रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, रघु वंदे रूप सनातनो रघु जुगो। जुगो का मतलब दो, जुगल, दो रघु। वो दो रघु कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं। और श्री जीव गोपाल को, और श्री जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये छह गोस्वामी को हम षट गोस्वामी कहते हैं। षट का मतलब है छह। वृंदावन के प्रमुख छह गोस्वामी हैं ये रूप गोस्वामी। सबसे पहले रूप गोस्वामी, उसके पश्चात सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी। तो ये उपदेशामृत किसके, किनके, किसके कृपा से हमें मिला है? रूप गोस्वामी के कृपा से। श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। हम जो दो महीना पहले, दो तीन महीना पहले जो सेमिनार दिया था, वो सेमिनार किसके ऊपर था? बृहद भागवत अमृतम। और उसको बृहद भागवत अमृतम का रचना कौन किए थे? सनातन गोस्वामी। और उसके पहले ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता कौन किए थे? ब्रह्मा जी स्वयं, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता प्रदान किए। और उसके पहले और सेमिनार हुआ था? नहीं, केवल ये दो हुआ है ना, और ये तीसरी हो रहा है, ब्रह्म संहिता, बृहद भागवतामृतम और अब उपदेशामृत। तो रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, उनमें से एक है ये उपदेशामृत। उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, नाटक भी हैं, विदग्ध माधव, ललित माधव, उनका बहुत स्तवावली है, उनके बहुत सारे रचनाएं हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, उज्जवल नीलमणि, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने प्रणयन किए थे। महान दार्शनिक थे, महाकवि थे। रूप गोस्वामी का ये जो उपदेशामृत, ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको, इसके ऊपर सेमिनार दे रहे हैं। क्योंकि मैं जो पहले बताया था कि आपको इस ग्रंथ पढ़ने को प्रेरणा मिले और इस ग्रंथ में क्या किसका वर्णन हुआ है वो आप थोड़ा कुछ समझ सके, और बाद में क्या करना होगा आपको इसको पाठ करना होगा। तो कल तक हम चार श्लोक केवल किया है, पहले दिन हम तीन श्लोक किया था, कल वो पहला तीन श्लोक का रिवाइज करने के पश्चात हम चौथा श्लोक को विचार किया, तो आज तो काफी रह गया बाकी, 5 से 11 तक, तो 7 श्लोक बाकी रह गया है ना, तो आज थोड़ा हमको जल्दी जल्दी करना होगा। अब तक तो हिंदी में बताया बहुत कुछ, अब मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। अच्छा, सो नाउ टुडे वी बिगिन विद द 5th वर्स। कृष्णेति जस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विगमनन्यमन्य निन्दादिशून्नारिदमीक्षित संगलब्धा। तो आप भी गाएंगे, कृष्णेति जस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विगमनन्नमन्य निन्दादिशून्नारिदमीक्षित संगलब्धा। इसका द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी हु चैंट्स द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वन शुड ऑफर हम्बल ओबेसेंसेस टू द डिवोटी हु हैज अंडरगॉन स्पिरिचुअल इनिशिएशन एंड इज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग द डेटी। एंड वन शुड एसोसिएट विथ and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. So there are 3 types of devotees: Kanishtha Adhikari, Madhyam Adhikari and Uttam Adhikari. 3rd class devotee, 2nd class devotee and 1st class devotee. So towards different types of devotee, our attitude should be different also. So one who is, so here that is being described, who chants the Hare Krishna Maha Mantra, Krishneti Jasya Giri, तं मनसाद्रियेत, मनसाद्रियेत, मनसा आद्रियेत, अर्थात मन में उनका आदर या समादर करना चाहिए। जिनका मुंह में कृष्ण नाम होता है, जो कृष्ण नाम करते हैं, उनको मन में उनका सादर प्रणाम या करना चाहिए। और दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम ईशम्। जिनको दीक्षा मिला है, जिनको सद्गुरु से दीक्षा हुआ है, और जो भजन्तम ईशम, जो भगवान को पूजा करते हैं, उन भक्तों को क्या करना चाहिए? प्रणति भी प्रणाम करना चाहिए। और जो भजन विज्ञ, जो भगवान का सेवा में बहुत एडवांस्ड हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको सेवा करना चाहिए। और भगवान को जो बहुत बड़े भक्त हैं, उनका उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम सोचेंगे कौन भगवान के बड़े भक्त हैं। निंदादिशून्य, जो दूसरे को निंदा नहीं करते हैं। निंदादिशून्य रिदम, जिनका दिल, जिनका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो गए हैं और जिसके कारण वो कभी की कभी किसी को निंदा नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को वह उस उन भक्तों को सेवा करना चाहिए। तो ऐसे हम देख रहे हैं श्लोक के बाद श्लोक कैसा एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। पहला श्लोक में किसका वर्णन हुआ है, जो भक्त है उनका गुण कैसा है, है ना। जो छह वेग जो हैं, वो छह वेग को भक्त दमन कर चुके हैं। जो भक्त हैं, जो भगवान का भक्त हैं, उन्होंने ही केवल ये छह वेग को दमन कर सकते हैं, नहीं तो ये छह वेग को दमन करना संभव नहीं है। ये छह वेग कौन क्या क्या है, याद है आपको? वाचवेगम, मनसोवेगम, क्रोधवेगम, जिह्वावेगम, उदरवेगम, उपस्थवेगम। तो एतान वेगान ज विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। उन्होंने सारा पृथ्वी भर शिक्षा दे सकते हैं, शिष्य बना सकते हैं। और सेकंड श्लोक में किसका वर्णन हुआ है, अगर हम भक्त बनना चाहते हैं। अच्छा, ये तो वर्णन हुआ है, तो इसके पश्चात इसका इंडिकेशन क्या हुआ, ये छह वेग अब हम अगर दमन करना चाहते हैं, वश में लाते हैं, लाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, हमको भक्त बनना होगा, भगवान का भक्त बनना होगा। भगवान का भक्त बने बिना ये इसको दमन करना कभी भी संभव नहीं हो सकता है। और उसके पश्चात हमें निर्देश दिया गया है कैसे भक्त बनना चाहिए। तो भक्त बनने के लिए पहले किसको संग नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका निर्देश दिया गया। और उसके पश्चात तीसरे श्लोक में क्या क्या करना चाहिए उसका निर्देश दिया गया है। और चौथा श्लोक में भक्तों के साथ कैसे लेन देन करना चाहिए, भक्तों के साथ प्रीति का संपर्क कैसे स्थापना करना चाहिए, उसका वर्णन हुआ है। और आप पंचम श्लोक में क्या हो रहा है, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। जो भगवान को नाम लेते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, उनके प्रति मन में श्रद्धा रखना चाहिए। जिनका दीक्षा हुआ है और भगवान को सेवा करते हैं, मंदिर में भजन ये पूजा कर पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। और जो भक्त भगवान का शुद्ध भक्त बन गए हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त हैं, उनको सेवा करना चाहिए। ठीक है, तो ये करने से हम भक्ति मार्ग में भक्तों के संगत करके करने के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके पश्चात सिक्स्थ वर्स में वर्णन हुआ है, दृष्टि स्वभाव जनितैर बपुश्च दीशय दोषैर न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्ये गंगां भसाम न खलु बुद्बुदफेन पंकै ब्रह्मद्रवत्तम अपगच्छति नीरधर्म। तो अब सिक्स्थ वर्स, षष्ठ श्लोक, आप क्या बोलते हैं, छठा श्लोक में इसका वर्णन हो रहा है कि भक्तों को कैसे दर्शन देखना चाहिए। अगर भक्तों में जो कोई दोष है उसको दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर भक्त का जन्म कोई अच्छा ये लेट मी नाउ रीड अच्छा इसका हम हिंद आई विल रीड द ट्रांसलेशन। बीइंग सिचुएटेड इन हिज ओरिजिनल कृष्ण कॉन्शियस पोजिशन अ प्योर डिवोटी डज नॉट आइडेंटिफाई विद द बॉडी। सच ए डिवोटी शुड नॉट बी सीन फ्रॉम अ मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। Indeed, one should overlook a devotee's having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee. But despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam and mud. The Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. तो इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अच्छा इसको हम एक साथ गाएंगे। दृष्टि स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्ये दण्डाम्भसाम् न खलु गुद्गुद फेन पङ्कैः ब्रह्मद्रवत्तम् अपगच्छन्ति नीरधर्मैः। बहुत अच्छा। अपने मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्तों को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्तों के निम्न कुल में जन्मने उनसे उसने उसके कुरूप चेहरे विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर को परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। वो इस गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुद फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? भक्तों का संग कैसे करना चाहिए वो पहले विचार हुआ। तो अब हमें चेतवानी दिया जा रहा है कि अगर भक्तों का जन्म निम्न कुल में हुआ है या भक्तों का शरीर में कुछ ये है बीमारी है या देखने में चेहरा कुरूप है, ये सब अगर भक्तों में देख होता है तो उसके द्वारा भक्तों को विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों तो अपना शरीर को अपना स्वरूप नहीं समझते। भक्तों का स्थिति कैसा है, वो अपने आप को भगवान का दास के रूप में एक चिन्मय आत्मिक स्वरूप को वो वरण कर लिया है, वो अपना आत्मिक स्वरूप को पहचान लिया है। तो इसलिए भक्तों का परिचय या भक्तों का दर्शन उनका शरीर के रूप के अनुसार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखने में जो बहुत सुंदर है वो बड़ा भक्त है और देखने में जो कुरूप है वो भक्त नहीं है। ये विचार भौतिक विचार है, ये विचार शरीर का विचार है ना। ये रूप कुरूप और सुंदर रूप ये सारे किसका होता है? शरीर का। पर जब हम भक्तों को दर्शन करते हैं तो उनके शरीर के अनुसार उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। भक्तों का दर्शन कैसे होना चाहिए? उनका भक्ति के माध्यम उनका दर्शन होना चाहिए। देखिए हम जब हनुमान जी को दर्शन करते हैं, सब जाके पूजा करते हैं उनको, तब क्या हम सोचते हैं अरे ये तो बंदर है? ऐसा कभी हम सोचते हैं नहीं। हम क्या देखते हैं? हनुमान जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको पूजा करते हैं। गरुड़ पंछी हैं, वैसे ही किसी भी रूप से भगवान का, जैसे भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, भगवान का भक्त भी किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस भगवान का भक्तों का दर्शन उनके शरीर के माध्यम नहीं करना चाहिए, भगवान का भक्त के दर्शन उनके भक्ति के माध्यम करना चाहिए। अगर हम शरीर के माध्यम करेंगे तो हमारा दर्शन में गलत आ जाएगा, हम नहीं दर्शन कर सकते। तो इसका वर्णन ऐसे हुआ है जैसे गंगा का पानी, गंगा का पानी में अगर फेन है या बुदबुद है या गंदगी भी है तो उसका विचार हम करते हैं नहीं, हम गंगा में जाके उसको हटाकर हम नहा लेते हैं। कितने गंगा गंदा चीज गंगा में रह सकता है, पर गंगा गंगा पवित्र है, हर स्थिति में गंगा पवित्र है। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत कानपुर के पास, जहां गंगा का गंगा में बहुत सारे, कानपुर में टैनरीज है, टैनरीज मतलब जहां चमड़ा बनता है, कानपुर में वो चमड़ा बनाने का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। देखिए चमड़ा बनता है किससे? गाय का, गाय को मार के गाय का चमड़ा, और उसमें बहुत सारे केमिकल डालता है, ये होता है। पर देखा गया है कि कुछ मील बाद ही गंगा का जल एकदम निर्मल हो गया, उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं है। तो विदेशों से वैज्ञानिकों ने आए थे, जर्मनी से आया था, फ्रांस से आया था, हॉलैंड से आया था, जगह जगह से उन्होंने आकर, एक ग्रुप आकर गंगा का एक्सपेरिमेंट किया। तो देखा कि कुछ मील के बाद, मुझे सही पता नहीं है, शायद 40 मील या कुछ के बाद गंगा का पानी एकदम निर्मल हो गया, यद्यपि कानपुर में बहुत सारे गंदगी पोल्यूशन गंगा में डाला गया था। तो उन्होंने एक एक ये दिया है, अपना काल्पनिक विचार दिया। एक बोला कि गंगा के जो तट में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिसके कारण ये सब ये हो गया। अच्छा, और कोई किसी ने बताया, एक ये सब वैज्ञानिक है, दे साइंटिस्ट, और एक बोल रहा है कि गंगा में एक बैक्टीरिया है जो सारे पोल्यूशन को खा लेता है। तो ये सारे उसका काल्पनिक हाइपोथेसिस उन्होंने दिया है एक्सपेरिमेंट के बाद। पर असल विचार क्या है? असल विचार क्या है? गंगा, चूंकि गंगा भगवान के पैर धोकर शिवजी के सर पर आकर वहां से बह रही है, इसके कारण गंगा इतना पवित्र है कि सारे संसार के सारे पाप को गंगा नाश कर सकती है। असल विचार तो यही है। तो जो साइंटिस्ट है उसका विचार क्या होगा? यही विचार होगा। और जो मूर्ख है उसका विचार होगा, वो कल्पना करके कुछ उल्टा सीधा कुछ बताएंगे, पर उस विचार का कुछ फायदा नहीं होता है। असल विचार जो है, असल तत्व जो है, जो असल सत्य जो है, उसको जब हम समझ लेते हैं तभी हमको फायदा होता है। तो उसके कारण हम क्या करते हैं? गंगा में जाकर नहाते हैं। गंगा में जाकर नहाने से क्या होता है? पवित्र, सारे पाप नष्ट हो जाता है, सारे रोग भी नष्ट हो जाता है। मैं देखा ऐसे बहुत आदमी हैं जो हर रोज गंगा में जाके नहाते हैं, और जब भी उनका आयु बहुत हो गया है, लगभग मैं एक व्यक्ति को जानता था, उनका आयु 100 साल से भी अधिक था। मायापुर में हमारे गुरुजी प्रभुपाद का एक गुरु भ्राता थे, बहुत ही सरल व्यक्ति थे, बहुत बड़े भक्त थे, अकेला रहते थे और हर रोज जाके गंगा में नहाते थे। यद्यपि उनको उम्र 100 से भी अधिक था, उनका शरीर में कोई भी बीमारी नहीं था। खुद खाना पकाते थे, पैदल गंगा जाकर नहाते थे, 100 साल से भी अधिक उम्र के थे। तो ऐसे में देखा, ऐसे गंगा में नहाने का फल क्या होता है। तो हम देखते, हम क्या बोलते हैं कि गंगा का पानी गंदा है। आप शायद देखे होंगे, गंगा का पानी जब हम लेते हैं उसमें बहुत ये रहता है, मिट्टी रहता है। हम मायापुर में गंगा बहती है, वहां मायापुर गंगा के तट पर है। तो हम पहले ये करता था कि पानी, गंगा के पानी लाकर हम रख देता था, शाम को रखा और सुबह को देखता था सारे जो जितने ये था डस्ट पार्टिकल्स, वो जो कुछ था वो सब नीचे गिर गया और पानी एकदम साफ हो गया। तो भक्त भी ऐसा ही है। भौतिक दृष्टिकोण से भक्त को दर्शन नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों का दर्शन कैसे होना चाहिए, आपको मैं बताया ना, या किसको याद है? भक्तों का, भगवान का भक्त को दर्शन कैसे करना चाहिए? भक्तों का दर्शन आंखों से नहीं करना चाहिए, भक्तों का दर्शन कान से करना चाहिए। मतलब वो देखने में कैसा है वो बड़ी बात नहीं, उसमें कुछ नहीं देख उसका, आंखों से हम जब अगर भक्तों को दर्शन करना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाए। भक्तों का दर्शन कैसे होना चाहिए, करना चाहिए? कान के द्वारा, मतलब भक्तों जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए, और वो जो बोलते हैं उनके माध्यम हमें समझना चाहिए वो कैसे भक्त हैं। वैसे तो भौतिक जगत में हमारा दर्शन दृष्टि से, आंखों से होता है, परंतु आध्यात्मिक वस्तु का जो ग्रहण होता है वो केवल कान से ही हम कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक वस्तु तो हम आंखों के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते। तो ये श्लोक का अर्थ सब समझ गए हैं? अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप कौन से श्लोक हैं? 7। साक्षात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतप्त सरसनश्च नरोचिकान् किन्तादरादुननुदीनं खलु शैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गादमुदाहन्। The holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendentally sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. So now in the seventh verse we are getting the characteristic of Krishna's holy name, pastimes, activities, and their effect. Krishna's holy name, Krishna's transcendental pastimes, Krishna's qualities, Krishna's characters, they are all transcendental and they are all very sweet. But when somebody is afflicted with jaundice, then what happens? Do you know what happens when you get jaundice? Sweet, sugar, sweet things appear to be bitter. Sweet things appear to be bitter, taste bitter. So Krishna's name, Krishna's activities, Krishna's qualities, Krishna's pastimes, they're all extremely sweet. Now when something is sweet, then what happens? We become naturally attracted to that, isn't it? Mithai khane mein achcha lagta hai. Hai na? To mithai milne se hum khana chahte hain. पर अगर हमारा जॉन्डिस हो गया तो वो खाने में अच्छा लगेगा मिठाई वो विश्वाद लगेगा उसको इट विल टेस्ट बिटर बिटर कड़वा 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 लगता है तो कड़वा कुछ नहीं खाना चाहते है ना पर कभी कभी हम खाते हैं दवाई के रूप में जैसे बोला जाता है कि नीम का पत्ता यद्यपि वो कड़वा है पर वो बहुत अच्छा है खाना चाहिए हम खाते हैं पीते हैं नीम का रस और करेला का भी तो ये यद्यपि ये खाने में अच्छा नहीं लगता है तो फिर भी हम खाते हैं जिससे उपकार होता है उसको ग्रहण करना चाहिए तो जब जॉन्डिस होता है तो जो मीठा है उसको कड़वा लगता है पर जॉन्डिस का जो इलाज इलाज केवल वो शुगर कैंडी है शुगर कैंडी को क्या बोलते हैं बंगला में तो मिश्री बोलता है मिश्री बोलते हैं अच्छा तो मिश्री जो है वो है शुगर कैंडी ये जॉन्डिस का इलाज तो यद्यपि वो खाने में कड़वा लगता है पर उसको खाना चाहिए तो खाते खाते क्या होता है जॉन्डिस का इलाज हो जाता है और जब इलाज हो जाता है तब मीठा को मीठा स्वाद मिलता है जब मीठा स्वाद मिलता है तो हम क्या करना चाहते हैं तो मीठा को हम खाना चाहते हैं लेना चाहते हैं ग्रहण करना चाहते हैं तो ऐसे ही क्योंकि हमारा जॉन्डिस जैसा एक रोग हुआ है हम सब एक बीमारी से हम सब को एक बीमारी हुआ है जैसे जॉन्डिस एक बीमारी है वैसे हमको एक बीमारी हुआ है वो बीमारी का नाम क्या है पता है आपको वो बीमारी का नाम है भव रोग, भव रोग, इस भौतिक जगत का, जगत के प्रति जो आसक्ति से के कारण ये जो रोग होता है वो है भव रोग। ये भव रोग होने से क्या होता है, हमको कृष्ण का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, कृष्ण के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है, वो कड़वा लगता है। हम सोचते हैं और कृष्ण का नाम लेके क्या फायदा होगा, अच्छा नहीं लगता है, कृष्ण के बारे में सुनने से क्या फायदा होगा, चलो कितना अच्छा मूवी आया है तो मूवी देखने को चलो, उसमें मजा मिलेगा, है ना। परंतु असल मूवी से कुछ फायदा होता है, नहीं होता है। फायदा, असल फायदा किससे होता है, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से। पर भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा एक रोग हुआ है, एक बीमारी हुआ है। इस बीमारी के कारण हम, यद्यपि भगवान का नाम रूप गुण सारे बहुत ही मधुर हैं, पर उसको आस्वादन हम नहीं कर सकते। तो अब क्या करना चाहिए, रोग का इलाज, इलाज कैसे होगा, इलाज तब होगा जब हम ये दवाई लेते रहेंगे। भगवान को नाम लेने से अच्छा नहीं लग, यद्यपि अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लेना पड़ेगा, लेते रहना, और ये नाम लेते हुए हमारा बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो सप्तम श्लोक को हम एक साथ गाएंगे। सात कृष्ण नाम चरितादिशीताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंतादरादनुलीनं न खलु सैव जुष्टा साध्वी क्रमाद भवति तद्गाद मूलहंत्री। अर्थात कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्य सभी मिश्री के समान मधुर हैं। यद्यपि अविद्या के पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीव को किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, लेकिन ये आश्चर्य ही है कि इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करने से उसकी जीव में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो अगर भगवान को नाम लेने में मजा नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, भगवान के बारे में सुनने में आसक्ति नहीं हो रहा है, तो हमें क्या समझना चाहिए। अगर भगवान का नाम रूप ये सारे अगर कड़वा लगता है तो क्या सोचना होगा, क्या समझना होगा कि हमको पीलिया रोग हुआ है। पीलिया रोग होने के कारण हमें ये ऐसा कड़वा लग रहा है। तो जब पीलिया रोग होता है तो क्या क्या करना चाहिए, मिश्री खाना चाहिए। तो जो मीठा जो है उसको खाना चाहिए। तो असल में मीठा क्या है, भगवान का नाम, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये मधुर है। परंतु रोग के कारण हमें कड़वा लग रहा है, तो इसको इलाज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान को नाम लेते रहना। तो लेते लेते ये रोग का जब इलाज हो जाएगा तब मधुर स्वाद हमें मिलता रहेगा। और मधुर स्वाद जब मिल जाता है तब क्या होता, तब उसको हम छोड़ नहीं सकते। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मित क्रमेण रसना मनसी नियज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिल मित्रोपदेश सारम्। The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Braja, Golok Vrindavan, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to His devotional service. So, in this 8th verse, it has been advised what one should do in order to, what should one do after that in order to make spiritual advancement. The advice is that one should utilize his full time, that means 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities and eternal pastimes, and thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Braja. So, we just discussed, when you get jaundice, what is the cure for jaundice? To eat sugar candy. Whether we like it or not, we should do that. So, we are suffering from a disease, and if we want to become cured from the disease, then what should we do? We should constantly chant the name of the Lord, remember His pastimes, associate with His devotees, and in this way we can reside in Vrindavan, where we can serve Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And there, under the guidance of an advanced devotee, we should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to His devotional service. So this attachment to the devotees increase our attachment to Krishna. If we want to develop our attachment to Krishna, what should we do? We must associate with the devotees who have developed their attachment to Krishna. So step by step we are seeing how the instructions are given. So what was the previous verse? The 7th verse described, who remembers the 7th verse? What was said in the 7th verse? Okay, Gajendra. ओके हाँ तो भगवान का नाम करने से वो भगवान का नाम ही उसका इलाज है। भगवान का नाम श्रवण करना और भगवान का महिमा कीर्तन करना, तो उसके पश्चात ये अष्टम श्लोक में किसका वर्णन हुआ है? कैसे हर समय 24 घंटा भगवान का नाम करते रहे, अगर अच्छा लगे या ना लगे, है ना? तो ये उपदेश सही है, तो ये उपदेश ग्रहण करना चाहिए। ओके, 24 घंटा, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इससे क्या होता है, हम वृंदावन में वास कर सकते हैं, वृंदावन में हम विराज कर सकते हैं। ये करने से, है ना? अच्छा, तो नाइन्थ वर्स, शुड यू डू द नाइन्थ वर्स नाउ? ओके, लेट अस सिंग दैट ऑल्सो. वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्यम उदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडा मिहापि गोलोकपते प्रेमामृत प्लावन कुर्जादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कहा. That is, the holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha. Vaikuntha janito vara Madhupuri. Madhupuri ka matlab Mathura. Mathura Vaikuntha se pare. The holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. क्योंकि भगवान वहां अवतीर्ण हुए. सुपीरियर टू मथुरा पुरी इज द ट्रांसेंडेंटल फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन बिकॉज ऑफ कृष्णस रासलीला पास टाइम. एंड सुपीरियर टू द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन इज गोवर्धन हिल फॉर इट वॉज रेज्ड बाय द डिवाइन हैंड ऑफ श्री कृष्ण एंड वॉज द साइट ऑफ हिज वेरियस लविंग पास टाइम. And above all, the super excellent Sri Radhakund stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectarian prema of the Lord of Gokul, Sri Krishna. Where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radhakunda, which is situated at the foot of Govardhan Hill? So, everyone understood? सब समझ गए हैं ये श्लोक का अर्थ? हाँ, तो हम अब इसका विचार हिंदी में करेंगे. हम सब एक साथ गाएंगे. वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासत प्रवान वृंदारण्यम मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहासी गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना कुर्जादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कहा. मथुरा नामक पवित्र स्थान वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया था. वैकुंठ कहां है? आप मानते हैं वैकुंठ कहकर कोई जगह है? वैकुंठ कहां है? जहां देवताओं रहते हैं वो वैकुंठ है? नहीं, जहां देवताओं रहते हैं वो है स्वर्ग. जहां भगवान नारायण विराजमान है वो है वैकुंठ. वैकुंठ कहाँ है? इस भौतिक जगत के परे है. इस भौतिक जगत के परे है वैकुंठ. उसका विचार ऐसे होता है, इस भौतिक जगत के परे है ब्रह्म ज्योति. ब्रह्म ज्योति के परे है महेश धाम, शिवजी के धाम, और उसके परे है वैकुंठ या हरिधाम. पता है ब्रह्म संहिता के इसका वर्णन हुआ है ये श्लोक? पता है आपको? किसको पता है ये श्लोक? जिस श्लोक में ब्रह्म संहिता के में इसका वर्णन हुआ है, इसका वर्णन ऐसे हुआ है, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि. अर्थात भगवान का निज धाम स्वधाम है, अपना धाम है गोलोक, गोलोको नामनी निज धामनी तले च तस्य, सबसे ऊपर है गोलोक, गोलोक के नीचे क्या है, सबसे नीचे है देवी धाम, देवी का जो धाम है महामाया का धाम जहां हम अब विराज कर रहे हैं, देवी धाम के पड़े हैं महेश धाम शिवजी के धाम, और उसके पड़े हैं हरि धाम, और ये हरि धाम ही है वैकुंठ, परंतु वैकुंठ से भी पड़े हैं मथुरा, क्यों, क्योंकि भगवान वहां जन्म लिया था। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य जंगल है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी और रासलीला रचाई थी, और वो मथुरा से भी पड़े हैं। मथुरा क्यों श्रेष्ठ है वैकुंठ से, क्योंकि श्री कृष्ण ने वहां जन्म लिया, और मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, क्यों, क्योंकि भगवान वहां रासलीला रचना किए थे, रासलीला रचाई थी। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्यों, क्योंकि भगवान अपना हाथ में गोवर्धन को धारण किया था, और वहां उनकी विविध प्रेमों में लीला का स्थल रहा, और उन सबों में सबसे परम श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। ये गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम की अप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के पादमूल पर स्थित इस दैवी राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा। तो समझे हैं, आध्यात्मिक जगत में भी कंपैरिजन है, वैकुंठ से बढ़कर हैं, वैकुंठ के पड़े हैं मथुरा, मथुरा के पड़े हैं वृंदावन, वृंदावन के भी पड़े हैं गोवर्धन, और सबसे श्रेष्ठ हैं राधा कुंड। अच्छा, मथुरा से वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ क्यों है, भगवान वहां जन्म लिया, वैकुंठ से मथुरा से वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा, और वृंदावन से भी गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है, और गोवर्धन से भी राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि राधा कुंड भगवान का प्रेम से आप्लावित है। कर्मिभ्य परित, अच्छा दशम श्लोक अब करते हैं हम, कर्मिभ्य परिते परितो हरो प्रियतया व्यक्तिं जजुर्गानिन तेभ्य ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्तभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी तां नश्रये स्वकृति। अर्थात in the shastra it is said that of all types of fruitive workers he who is advanced in knowledge of the higher values of life is favored by the supreme lord hari out of many such people who are advanced in knowledge one who is practically liberated by virtue of his knowledge may take to devotional service he is superior to the others however One who has actually attained prema, pure love of Krishna, is superior to him. The gopis are exalted above all the advanced devotees because they are always totally dependent upon Sri Krishna, the transcendental cowherd boy. Among the gopis, Srimati Radharani is the most dear to Krishna. Her kunda, lake, is as profoundly dear to Lord Krishna as the most beloved of the gopis. As this most beloved of the gopis. Who then will not reside at Radhakund and in a spiritual body surcharged with ecstatic devotional feeling, aprakrita bhava, render loving service to the divine couple, Sri Sri Radha Govinda, who perform their Ashtakaliya Leela, their eternal eightfold daily pastimes? Indeed, those who execute devotional service on the banks of Radhakund are the most fortunate people in the universe. So, शास्त्र का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उसका पक्षपात करते हैं. अच्छा, उसके हाँ पक्षपात करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में बड़ा चढ़ा होता है. ऐसे अनेक ज्ञान में बड़े चढ़े हुए ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर मुक्त हो जाता है वो कभी कभी भक्ति ग्रहण करता है. ऐसा व्यक्ति अन्न से श्रेष्ठ है. किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है वो उससे भी श्रेष्ठ है. गोपियों समस्त उच्चतर भक्तों से पूज्य हैं क्योंकि वे सदैव गोपाल कृष्ण पर आश्रित रहती हैं. गोपियों में से श्रीमती राधारानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं. ये कुंड कृष्ण को गोपियों में से श्रीमती राधारानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं. ये कुंड कृष्ण को उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रिय हैं जिस तरह गोपियों में ये राधारानी सर्वाधिक प्रिय हैं. तो कौन ऐसा है जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद दैवी जुगल को जुगल की प्रेममय सेवा करना नहीं चाहेगा. जो नित्य ही अपने अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं, निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं. अच्छा, जो कर्मी का मतलब क्या है? जो कर्म करके उसका फल भोगना चाहते हैं. हाँ, कर्मी वो हैं जो सद व्यक्ति हैं, सत हैं. वो अपना कर्म के माध्यम वो सब कुछ लेना चाहता है. कर्म के फल के अनुसार वो भोगता है. तो उससे भी परे हैं जो ज्ञानी हैं, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान मिला है. तो आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण प्राप्ति से भक्ति मिलता है. जो आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं वही भक्त बनता है. और सारे भक्तों में से श्रेष्ठ हैं वो भक्त जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम मिला है. कृष्ण प्रेम मिला है. प्रेम के बारे में, कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है वो उससे भी श्रेष्ठ है. और जितने सारे भक्तों को प्रेम मिला है उनमें से श्रेष्ठ है कौन? गोपियां में से कौन श्रेष्ठ है? श्रीमती राधारानी. और राधारानी कृष्ण का बहुत प्यारी है. और राधा रानी का जो कुंड है राधा कुंड, वो भी कृष्ण का राधा रानी के समान ही प्रिय है। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो उस राधा कुंड के तट पर नहीं निवास करेंगे, करके निवास करके कृष्ण का प्रेममयी सेवा प्राप्त नहीं होगी। तो अब 11 श्लोक हम थोड़ा विचार करते हैं। कृष्ण सोच्चै प्रणय वसति प्रेमसी प्रेयसी भोपि राधा कुंडं चास्या मुनि भीरभितस्ताद्रिगेव ब्रधाति जत्प्रेष्ठरप्यल मसुलभं किं पुनर्भक्ति भाजं तत्प्रेमेदं सकृदपि सरह स्नातुरावीक्षरोति। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है और हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय बताया गया है। निस्संदेह राधा कुंड परम भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम पूर्ण तो प्रकट होता है। तो श्रीमती राधा रानी के स्थान सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के परम प्रेयसी सबसे प्यारे हैं श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी का जो कुंड है राधा कुंड, वो मुनियों द्वारा कृष्ण के उतना ही प्रिय बताया। मुनियों ने जो ज्ञानवान ऋषियों ने उन्होंने सब राधा कुंड को भी कृष्ण का राधा रानी के समान प्रिय करके वर्णन किया गया है। और ये राधा कुंड परम भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्त के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। जो बहुत बड़े बड़े भक्तों के लिए जो प्राप्त जिसको प्राप्ति कठिन है, तो साधारण भक्तों के लिए उसकी प्राप्ति तो कितना कठिन होगा। परंतु यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट होता है। राधा कुंड में एक बार स्नान करने से हम पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ डिवोशन नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन का 11 श्लोक में ये वर्णन हुआ है। अब याद है कैसे इसका क्रम बढ़ रहा है, हम एक बार विचार कर लेते हैं। पहला श्लोक में किसका विचार हुआ है? हाँ, 6 वेगों का विचार, और उसको दमन करने से क्या क्या फायदा होता है, दमन करना क्यों चाहिए और कैसे दमन कर सकते हैं। दूसरा श्लोक में जिस कार्य करने से भक्ति नष्ट होता है उस कार्य का वर्णन। तीसरे श्लोक में जिस कार्य करने से भक्ति बढ़ता है उसका वर्णन। हाँ, और चौथा श्लोक में प्रीति के संबंध कैसे भक्तों के साथ रखना चाहिए। अच्छा, पंचम श्लोक में तीन प्रकार के भक्तों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो हरि नाम करते भगवान को नाम लेते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको मन में आदर करना चाहिए। जो दीक्षा प्राप्त हो चुके हैं भगवान को सेवा कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, हाँ उनको प्रणाम करना चाहिए। और जो भगवान का शुद्ध भक्त है उनको क्या करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद छठे श्लोक में, हाँ भक्तों का विचार उनका शारीरिक रूप से नहीं और बाहर के रूप ये विषय के द्वारा नहीं करना चाहिए। भक्तों का कभी अगर कोई किसी भक्तों का नीचे कुल में अगर जन्म हुआ तो यह सोचना नहीं चाहिए कि ये अच्युत है। चंडालोपि द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायणः, हरि भक्ति प्राप्त होने से चंडाल भी ब्राह्मण से आगे बढ़कर बन जाता है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। यद्यपि जन्म हुआ है चंडाल के घर में पर भक्ति के कारण वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। और भक्तों का अगर शारीरिक देखने में कुछ सी कुरूप है तो उसको ये नहीं सोचना है कि वो एक कितना कुरूप है, या भक्तों का बीमार शरीर में बीमार होने से उसे ऐसा ही नहीं सोचना कि ये भक्त नहीं है। अच्छा, सप्तम श्लोक में किसका वर्णन हुआ है, अगर भक्ति में हम के क्या भक्ति कैसे प्राप्त होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर भगवान का नाम रूप लीला ये बहुत मधुर है परंतु जब बीमारी होता है तो क्या होता है, मन खाने में मिठाई मधुर वस्तु अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे भगवान का नाम यद्यपि मधुर है पर हमारे बीमारी के कारण हमें मधुर नहीं लग रहा है। परंतु जैसे पिलाई रोग का इलाज मिश्री खाने से होता है, यद्यपि उसको कड़वा लगता है तो मिश्री खाते खाते, मिश्री तो कड़वा नहीं है, मिश्री तो मीठा है, वैसे हरिनाम भी मधुर है। तो हरिनाम करते करते हमारा ये रोग जब इलाज हो जाएगा तब हरिनाम का जो रस वो हम आस्वादन कर सकेंगे और तब हम हरिनाम छोड़ नहीं सकेंगे। अब ऐसा होता है महाराज बोला है 16 माला जपने के लिए, तो चलो महाराज के तो थोड़ा बहुत श्रद्धा करता हूँ तो उस कारण हम करते हैं, पर कितना समय चला जाता है और रात को जब देखता है 16 माला पूरा नहीं हुआ है तब सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे आप, काफी देर हो गए सो जाते हैं, मैं भी थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो ऐसे जो मन में हरिनाम करने को इच्छा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसका स्वाद नहीं मिल रहा है। जब स्वाद मिल जाएगा तब इसका स्वाद, तब इसको हम छोड़ नहीं सकेंगे। और स्वाद कब मिलेगा, जब रोग का इलाज होगा, और इलाज कैसे होना है होगा, नाम करते करते। साथ हुआ आठवां श्लोक, इसलिए हर समय भगवान का नाम लेते रहे। हाँ, भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण करना, तो ये कर 24 घंटा ही करना चाहिए। अच्छा, नवम श्लोक में किसका वर्णन हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो गिव हर द माइक। अब बताइए। बहुत अच्छा। तो राधा रानी कौन है ऐसा जो और वहां वास निवास नहीं कर? बहुत अच्छा। अच्छा, दसम श्लोक में किसका वर्णन हुआ है? पारुल। और एकादश ग्यारह श्लोक कौन बोलेंगे? नमिता तुम बोलेगा? बोल। और बाद में क्या बताए हैं उसके पश्चात हाँ उसमें यद्यपि सामान्य व्यक्ति के लिए राधा कुंड की प्राप्ति कठिन है, पर राधा कुंड में स्नान करने से कृष्ण भक्ति मिल जाती है। वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा।